This year, our
मेरी पहली दो पोतियों का विवाह इस वर्ष होगा. कुछ वर्षों के भीतर उनके 10 अन्य चचेरे भाई बहन अपने जीवन के उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां वे परिवार की रचना के अद्भुत संस्कार संसार का अनुसरण करेंगे. इस खुशखबरी ने मुझे गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है क्योंकि उन्होंने मुझसे इस विषय में मेरी सलाह मांगी है. विशेष रूप से उन्होंने पूछा है मैं कौन सी बातों का चयन करूं जो मुझे सुख के रास्ते पे ले जाएंगी, और अन्य शब्दों में कौन बातें मुझे दुख के रास्ते में ले जा सकती हैं. स्वर्गीय पिता ने हम में से प्रत्येक को अलग अलग रूप में बनाया है. हम में से कोई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते. कोई दो परिवार बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते. इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि परिवार में सुख का चयन करने के लिए एक सलाह देना कठिन है. फिर भी प्रिय स्वर्गीय पिता ने अपने बच्चों के लिए एक सुख प्राप्त करने की एक ही प्रक्रिया की स्थापित की है. हमारे व्यक्तिगत गुण चाहे कुछ भी हो या हमारे अनुभव कैसे भी हो, सुख की केवल एक ही योजना है, और यह योजना परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना है. मेरी पोतियों सहित जो कि विवाह के विषय में सोच रही हैं, हम सबों के लिए एक महान आज्ञा जो चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी और एक सुखी परिवार की ओर ले जा सकती है. यह सभी संबंधों में लागू होती है, बेशक परिस्थितियां कुछ भी हों. यह संपूर्ण धर्मशास्त्रों में हमारे बार बार बताया गया. ये सब जो प्यार के हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं उनके लिए बाइबल के शब्द इस प्रकार हैं. वह उन से एक प्रस्तापक परखने के लिए पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. बड़ी और अमूल्य मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. यही दो आज्ञाएं हैं जिस पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का अधिकार है. इस स्पष्ट कथन से यह सरल सार निकालना कठिन नहीं है कि परिवार में सुख लाने के लिए मुझे किस प्रकार के चयन करने चाहिए. मैं एक प्रश्न से आरंभ करता हूं, कौन सी बातें मुझे प्रभु से अपने मन सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखने की ओर ले जाती है. मेरे लिए इस प्रश्न का जवाब वे बातें हैं जिसे मुझे उसने सुख का महसूस करने के योग्य बनाया है, जो प्रभु के प्रायश्चित की समा के द्वारा मिलता है. सालों पहले मैंने एक युवा अल्बुकर्क के न्यू मेक्सिको में बपतिस्मा दिया था, जिसे मेरे प्रचारक साथी और मैंने सिखाया था. मैंने उसे पानी में डुबोया था और उसे पानी से बाहर निकाला. वह लगभग मेरे जितना ही लंबा रहा होगा क्योंकि वह मेरे सीधे कान में बोला था. उसके चेहरे से कुंड का पानी और आंसू बह रहे थे. अपनी वाणी में खुशी के साथ उसने कहा, अब मैं निष्कलंक हूं. खुशी की ऐसे ही आंसुओं को मैंने किसी की आंखों में देखा था जिसने परमेश्वर के प्रेरित शब्दों को कहा था. उसने उससे करुणामय साक्षात्कार के बाद कहा, प्रभु के नाम में मैं तुम्हें क्षमा करता हूं. वह तुम्हें उसके साथ उसके स्वयं के समय में अपने स्वयं के तरीके से काशासन देगा जो उसने किया है. मैंने देखा है प्रभु क्यों कहता है कि जब पापों को क्षमा कर देता है वह उन्हें याद नहीं रखता. प्रायश्चित की शक्ति के द्वारा वे लोग जिनसे मैं जानता हूं और प्यार करता हूं बदल चुके हैं, पाप के प्रभाव मिटा दिए गए हैं. मेरे हृदय उद्धारकर्ता और प्रेमी पिता जिसने उसे भेजा था के प्रति प्रेम से भरा हुआ है. जिन लोगों का मैं ध्यान रखता हूं उसका पीड़ा से राहत पाने के लिए वही दे सकता है। उधारकर्ता के पास जाने के लिए उत्साहित करने से वह महान आशीषें मिली हैं। इसलिए मैं उनको, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, गिरजे में प्रत्येक नियुक्ति को स्वीकार करने और पूरा करने का निवेदन करता हूं। परिवार के सुख के लिए यह चयन महत्वपूर्ण है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में, दबाव में, हम परमेश्वर प्रभु की सेवा करने की नियुक्ति को अस्वीकार या अनदेखा करने के लिए फुसला सकते हैं। हम यह हमें स्वयं को, हमारी पत्नी या पति को और हमारे परिवार को आत्मिक खतरे में डाल सकता है। इनमें से कुछ नियुक्तियां महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन डीकन परिषद में सिखाने की नियुक्ति का स्वीकार करके मेरे जीवन और मेरे परिवार में बेहतर बदलाव लाया था। मैंने उद्धारकर्ता के लिए उन डीकन के प्रेम और डीकन के लिए उसके प्रेम को महसूस किया था। मैं एक भूतपूर्व स्टेक और मिशन अध्यक्ष के जीवन में उसकी शिक्षाओं की परिषद के सलाहकार की नियुक्ति में होते देखा था। मैं अन्य को जानता हूं जो धर्माध्यक्ष और फिर क्षेत्रीय सत्र रह चुका है। उसके शिक्षकों की परिषद द्वारा एक लड़के की सहायता को करने को कहा गया था जिससे दुर्घटना हो गई, चोट लगी थी। उस सेवा के चमत्कारों के द्वारा बहुत से के जीवन छुआ था। दूसरों की सेवा करने के दौरान संभवतः हम पवित्र आत्मा की संगति पाने की याचना करते हैं। उसकी सेवा में सफलता हमारी शक्ति से अधिक चमत्कारों को कराती है। एक बच्चे के गंभीर विद्रोह का सामना कर रहे माता पिता जानते हैं कि यह सच है, जितना कि वह दौरा करने वाली शिक्षिका जानती है जिससे एक स्त्री ने दिलासा देने के लिए कहा था जब उसके पति ने उसको बताया कि वह उसे छोड़ रहा था। दोनों सेवक आभारी हैं कि उन्होंने सुबह प्रभु से प्रार्थना, प्रभु पवित्र आत्मा को एक साथी के रूप में भेजने के लिए प्रार्थना की थी। केवल पवित्र आत्मा की संगति के साथ हम किसी अनबन से मुक्त विवाह में एक समान साथी बनने की आशा करते हैं। मैंने देखा है कि यह संगति विवाह में खुशी पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण रूप से एक बनने के चमत्कार के लिए स्वर्ग की मदद की जरूरत होती है। इसमें समय लगता है। स्वर्गीय पिता और हमारे उद्धारकर्ता की उपस्थिति में हमेशा एक साथ रहना हमारा उद्देश्य है। मेरे पिता और मेरी माता एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। मेरी माँ एक गायक और एक कलाकार थी। मेरे पिता की रसायन शास्त्र में सूचि थी। एक बार एक संगीत समारोह में मेरी माँ को आश्चर्य हुआ जब मेरे पिता दर्शकों की ताली बजाने से पहले ही खड़े हो गए और जाने लग गए। मेरी माँ ने पूछा, वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोलेपन से कहा, यह खत्म हो गया है, क्या नहीं हुआ? केवल पवित्र आत्मा के कोमल प्रभाव से वह वहां उनके साथ समारोह में गए और उसके बाद भी वह कई बार इन समारोह में गए थे। मेरी माँ न्यू जर्सी में 16 सालों तक इसलिए रही थी ताकि मेरे पिता रसायन शास्त्र में शोध करते और सिखाते हुए परिवार का भरण पोषण कर सकें। माँ के लिए अपनी विधवा माँ और अपनी अविवाहित बहन से अलग रहना एक बलिदान था जिन्होंने उनके पुराने फार्म हाउस में उनके परिवार की परवरिश की थी। उन दोनों की मृत्यु उस दौरान हो गई थी जब वह न्यू जर्सी में रहती थी। केवल उसी समय मैं अपनी माँ को कभी रोते हुए देखा। कई वर्षों बाद मेरे पिता को यूटा में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उन्होंने मेरे जवाब पूछा, मिल्ड्रेड तुम क्या कहती हो, मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, हेनरी जो तुम ठीक समझते हो उसे करो। पिता ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह माँ ने एक पत्र लिखा, काश यह पत्र मेरे पास अभी होता। यह पत्र एक फटकार के साथ ओपन होता है। उन्होंने लिखा था कि इसको सिर्फ ऑफिस में खोलना। पिता ने वर्षों पहले माँ से वादा किया था कि यदि उनके बस में हुआ तो वे अपने माँ को उनके परिवार के निकट ले जाएंगे। माँ के गुस्से को देखकर वह आश्चर्य हुआ। उनके माँ की हृदय की घोषणा अभी उनको याद नहीं थी। उन्होंने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए संदेश भेज दिया। उसने कहा, मिल्ड्रेड तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ ने कहा, आपको याद होना चाहिए था। उन्होंने हमेशा बोला कि यूटा आने का चयन उनका स्वयं का था। कभी भी यह नहीं कहा कि उन्होंने अपने व्यवसायिक कैरियर को का बलिदान किया था। मेरे माता पिता पूर्ण रूप से एक होने के चमत्कार को प्राप्त कर लिया था। यह बेहतर होता यदि मेरे पिता को वर्षों पहले किए उनके वादे को पवित्र आत्मा द्वारा स्मरण कराया जाता, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने द्वारा अपने हृदय को कोमल करने की अनुमति दी ही, जिससे माँ की इच्छा उनकी अपनी इच्छा बन गई थी। स्वर्गीय पिता के पास परिपूर्ण दूरदर्शन था। वह सबको जानता है, वह हमें हमारे भविष्य को जानता है, वह जानता है कि किन कठिनाइयों से हम गुजरेंगे। उसने पीड़ा उठाने के लिए अपने बेटे को भेजा ताकि हम वह शरीर धारण कर सके और जान सके कि हम किन कठिनाइयों में उसे सहायता देनी है। हम जानते हैं कि स्वर्गीय पिता की आत्मिक संतान इस संसार में कभी कभी पाप और दुख का चयन करती है, इसलिए उसने अपने पिलौटे को अपने मुक्तिदाता होने के लिए भेजा। संपूर्ण सृष्टि में प्रेम का महानतम कार्य, इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें बेहतर बनने के लिए अपने पिता के साथ अनंत जीवन रहने के लिए तैयार होने में परमेश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी और इसमें समय लगेगा। परिवारों का जीवन हमारी परीक्षा होगी। हमें नश्वर जीवन का उपहार देना यह परमेश्वर की उद्देश्य में से एक है, ताकि हम परीक्षाओं में गुजर कर समझता हो। यह विशेषकर पारिवारिक जीवन में सब सच होगा, जहां हमें भारी खुशी और भारी दुख और चुनौतियां मिलेंगी, जो कभी कभी हमारे सहने और क्षमता से अधिक कठिन प्रतीत होती हैं। अध्यक्ष जॉर्ज क्यू कैन ने इस विषय में कहा था, परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे बच्चों को उन परीक्षाओं के लिए तैयार किया है जिसका हम सामना करेंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे परमेश्वर से प्रेम ना मिला हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका उसने ख्याल ना रखा हो और प्रेम से स्पर्श ना किया हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे बचाने की उसकी इच्छा ना हो और जिसे बचाने के लिए उसने योजना ना बनाई हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी जिम्मेवारी उसने अपने स्वर्गदूतों को ना दी हो। हम अपनी दृष्टि में और एक दूसरे की दृष्टि में तुच्छ और घृणित हो सकते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और कि उसने हमें अपने स्वर्गदूतों बल और शक्ति के आदर्श प्राणी को हमारे जिम्मेदारी सौंपी है। वे हमारे ध्यान रखते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। अध्यक्ष कैनन ने सिखाया था वह सत्य है। आपको यह आश्वासन की जरूरत होगी वैसे ही जैसे मुझे इसकी जरूरत होती और मैं इस पर निर्भर रहता हूं। कि मानवीय दूत उनकी मदद करने के लिए आए हैं और वो आएंगे। परमेश्वर के पास उसकी प्रत्येक संतान को बचाने की योजना है। बहुत से जो इसमें शामिल हैं उन्हें एक भाई या एक बहन, एक दादा या दादी के साथ रखा गया है जो उनसे प्रेम करते हैं, बेशक वे कुछ भी क्यों ना करें। वर्षों पहले मेरे एक मित्र ने दादी के बारे में कहा था, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया था, हमेशा प्रभु और गिरजे के प्रति निष्ठावान, फिर भी उसके पोते ने अपराध और का जीवन अपनाया था। उसने अंततः जेल में भेज दिया गया। मेरे मित्र ने याद किया उसकी दादी, जो कि लंबा रास्ता तय करके अपने पोते को से जेल में मिलने आई थी। अपनी आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने अच्छा जीवन जीने का प्रयास किया, फिर क्यों मुझे इतना दुखी पोता मिला जिसने लगभग अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसका उत्तर उसके मन में इन शब्दों में आया, मैंने तुम्हें इसे दिया है क्योंकि मैं जानता था कि तुम उसे हर हाल में प्यार करोगी, बेशक उसने कुछ भी किया हो। हम सब के लिए एक बहुत बढ़िया सबक है। इस निरंतर दुष्ट होते संसार में प्यार करने के लिए माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और परमेश्वर के सभी सेवकों के लिए संसार में मार्ग आसान नहीं होगा। हम परमेश्वर के संतान को सुख के मार्ग में चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हमें चुनने की स्वतंत्रता दी गई है के कारण परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। स्वर्ग के पिता और उसके पुत्र प्रिय पुत्र परमेश्वर के सभी बच्चों से प्रेम करते, बेशक वे कुछ भी चयन करें या कुछ भी बने। उद्धारकर्ता ने सबके पापों का मूल्य चुका दिया है। पेशक पाप कितने भी इन्होंने क्यों ना हो। यद्यपि न्याय होना चाहिए, फिर भी दया का मौका दिया जाता है जो कि न्याय से वंचित नहीं करेगी। आलमा अपने बेटे कोरिंटन को इस आशा को इन शब्दों में व्यक्त किया था, इसलिए न्याय के अनुसार परीक्षा के समय मैं मनुष्य द्वारा बिना पश्चाताप के मुक्ति की योजना को अमल में नहीं ले जा सकता। हाँ, तैयारी का इस आरंभिक अवस्था के बिना, क्योंकि इसी में यही शर्त थी, अन्यथा दया निष्प्रभाव हो जाती और अब न्याय का कार्य नष्ट हो जाता। यदि ऐसा ना होता तो परमेश्वर की संतान और परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता था, अब परमेश्वर परमेश्वर ना होता। मेरा संदेश अपनी पोतियों के लिए और अपने उन सबों के लिए जो अनंत परिवार स्थापित करने जा रहे हैं, यह है कि जो विश्वासी हैं उनके लिए खुशी की गारंटी है। संसार की उत्पत्ति से पहले ही स्वर्ग में ऐसे प्रेमी पिता और उसके प्रिय पुत्र ने उनके साथ रहने प्रेम और कार्य किया था, जिन्होंने जानते थे कि वह मार्ग से भटक जाएंगे, परमेश्वर ने उन्हें प्राप्त करेगा। आपको इस जानकारी से फायदा है क्योंकि वे आपके संसार में हैं जबकि आप इतने विश्वासी नहीं थे। लेकिन हम इस आश्वासन से उत्साहित हो सकते हैं और हम सभी प्रिय परिवार के सदस्य के रूप में एक साथ होने की खुशी को पहले कभी महसूस किया था। परमेश्वर के साथ मदद करने के लिए आशा और उसके साथ खुशी को फिर से महसूस कर सकते हैं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हम सबों के लिए ऐसा ही हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।